प्रातः क्लास चल रहा था,
दस ग्यारह 1966 गुरुवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी भक्ति का अर्थ ही है दुर्गति। भक्ति रहो भक्ति रहो भक्ति रहो, ठिकाना कहीं मिलता ही नहीं। नाम रख लिया है भक्ति, ठिकाना नहीं मिलता है, बुद्धि भटकती ही रहती है तो दुर्गति होती है। सदगति तो हो ही नहीं सकती। सत्य कहा जाता है जो सदाकाल रहे, और भक्ति में तो अपन को देह समझते हैं, ये तो पांच तत्वों का पुतला है, देह विनाशी है, आज है कल नहीं होगी। फिर सत्य क्या है? इस देह में जो आत्मा है वो सत्य है, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी, पास्ट में भी थी। जब अपन को आत्मा समझेंगे तो आत्मलोक की बात याद आएगी। श्लोक में आत्माओं का धाम है, सत्य धाम कहा जाता है। और ये पहचान होती है कि सत्य धाम है सत्य बाप का घर, तो आत्मा की सदगति होगी। बाप का घर मिल गया, ठिकाना मिल गया, तो भक्ति भागते भागते रहने की भी कोई इंतहा होगी ना, दुर्गति की भी कोई सीमा होगी ना। जब दुर्गति पूरी हो ड्रामा के प्लान अनुसार, और ये दुनिया भी पूरी पुरानी हो जाए, और तुम्हारा 84 जन्म भी पूरा हो जाए, इसका तुम्हारा उन आत्माओं का नहीं, कौन सी आत्माओं का है? जो विपरीत धर्म में चली जाती है, इनका नहीं, इनका कह के किसी तरह पीछा किया है, ब्रह्मा की तरह, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह, जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं। तो क्या ब्रह्मा के और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जो ब्रह्मा के फॉलोअर हैं उनके पूरे 84 जन्म नहीं होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते। क्यों? प्रश्न की आत्मा है मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता,
फर्स्ट जन्म है, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में उनके 13 जन्म, तो 21 जन्म तो ये हुए और 63 जन्म द्वापर कलयुग के, तो 84 जन्म नहीं हुए है? हुए, परंतु पूरे 84 जन्म हुए क्या है? पूरे 84 जन्म माना जब से नई दुनिया स्थापन होती है संगम युग में, नई दुनिया की राजधानी बनती है, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण के नीचे लिखा हुआ है संबत 1, 1 और 1, वहां तो जन्म नहीं होता। पहले पत्ते का जन्म वहां होता है? नहीं होता। उससे पहले पत्ते कृष्ण वाली आत्मा कहो, दादा लेखराज ब्रह्मा कहो, उनके 84 जन्मों में से कुछ वर्ष कम होंगे या नहीं होंगे है? कम हो जाते हैं, तो पूरे 84 जन्म उनके भी नहीं कहेंगे। और तुम्हारे है? तुम्हारे पूरे 84 जन्म होते हैं। कितनों की है? तुम्हारे माने कितनों की है? हाँ, जिन्होंने पहचाना उनकी संख्या कितनी?
4.5 लाख।
एक साथ बाप को पहचान लेंगे है? नहीं, नंबरवार ही पहचानेंगे ना। तो 4.5 लाख में छोटे और बड़े बच्चे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे है? तो वो बड़े बच्चे कितने कि राजधानी स्थापन हुई और बाप को पहचान लिया है? 8। जो 8 है शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। इतना अच्छा पार्ट बजाते हैं कि सुप्रीम बाप शिव उनको सर माथे पर चढ़ा लेते हैं। 8 की माला कहाँ रखी जाती है? है? सर पर रखी जाती है। कहे सर में तो चंद्रमा भी रखा हुआ है? नहीं रखा है, तो वो भी 8 में होगा? नहीं। क्यों है? अधूरा चंद्रमा है, संपूर्ण नहीं होता। संगम युग में संपूर्ण नहीं होता, माना जो बाप का विरुद्ध है क्या तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया पार ले जाने वाला एक ही है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा या षष्ठी का जो पहला पत्ता है वो आत्मा का शरीर रूपी नैया और आत्मा दोनों पार लगती है क्या? है क्या लगती है पार? आत्मा तो पार लगती है लेकिन स्थूल शरीर पार नहीं लगता, क्योंकि स्थूल शरीर वो पहले ही छूट गया। कब? 69 में छूट गया। तो तुम बच्चों के लिए बोला कि ये पुरानी दुनिया भी पूरी हो जाए और तुम्हारा 84 जन्म भी पूरा हो जाए। और सतु प्रजान जो सृष्टि है कब? सत्व प्रधान षष्टि कब? 100 वर्ष का संगम, उसमें तमो प्रधान षष्टि भी है और सत्व प्रधान षष्टि भी है। तो सत्व प्रधान की शुरुआत कब? अरे भूल गए, 76 में राजधानी स्थापन हो जाती है। पुरानी दुनिया की पुरानी राजधानियां ही रहती हैं या नई राजधानी स्थापन हो जाती है? इसलिए बाबा ने बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। कब पूरे होते है? 77 है संपूर्णता वर्ष, और उसमें 40 वर्ष जोड़े तो 2017 पूरे होते होते 40 वर्ष पूरे होते हैं। और 70 है क्या रहता है? 70 है। तो संपूर्ण 70 एक ही होगा या अनेक होंगे? उसको कहते हैं ट्रुथ गॉड फादर। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम गॉड फादर शिव जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, इसलिए तीनों कालों का ज्ञाता है। तीनों काल का सत्य उसे पता है, भूत भविष्य और वर्तमान भी। वो एक ही सत्य है, और बाकी आत्माएं है? बाकी आत्माएं एक ही सत्य है, इसलिए एक ही सतगुरु है। एक को ही सदगुरु कहेंगे या कोई और को भी सदगुरु कहेंगे, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि को, ब्रह्मा को, कृष्ण वाली आत्मा को कहेंगे? क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण, और 16 कला संपूर्ण बनाने वाला कोई है या नहीं है? तो बनाने वाला सत्य हुआ या बनने वाला सत्य हुआ? बनाने वाला सत्य हुआ। लेकिन जिसे हम कहते हैं सत्य धाम का रहने वाला, सदा सत्य, वो सदगुरु है, है? वो सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप सदगुरु है, है? है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, सदगुरु दलाल है या नहीं? तो साकार है या निराकार? तो फिर निराकार सदगुरु हुआ है, साकार में वो निराकार प्रवेश करते है, फिर प्रवेश करके सत्य ज्ञान देता है। क्या देता है? सत्य, जो सदा सत्य तो है, परंतु उसके पास प्रॉपर्टी क्या है? बाप तो है, बाप क्या देता है? प्रॉपर्टी देता है। तो जो बाप प्रॉपर्टी देने वाला है, वो कौन सी प्रॉपर्टी देता है? है, ज्ञान की प्रॉपर्टी देता है। निराकार है ना? क्या है? निराकार। इस सच्ची पर भी आता है तो भी सदा निराकार, वो कभी साकार इंद्रियों में फंसता ही नहीं। फंसता है, अटैचमेंट होता है नहीं? तो जो सदा सत्य है, आत्मा है, सत्य आत्मा, लेकिन वो निराकार है, और निराकार बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? हैं? निराकारी वर्षा मिलेगा। तो निराकारी वर्षा पसंद है? है? हम निराकार आत्मा, हम निराकार आत्मा रूपी बच्चे, तो आत्मा रूपी बच्चों को निराकार बाप से निराकार वर्षा मिल जाए, उसमें संतुष्ट नहीं होंगे? भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, ये कहते हैं ज्ञान देकर चले जाओ, कहते हैं कि आओ दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आकर के वेदवाणी सुना कर चले जाओ। वेद माने, वेद माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी। तो ब्रह्मा के तन में आया, सत्य ज्ञान वेद वाक्य सुना के चला गया, संतुष्ट हुए? हाँ? क्यों? निराकार बाप ने निराकारी वर्षा दे दिया ब्रह्मा के द्वारा। आत्मा निराकारी, निराकारी आत्मा को निराकारी वर्षा मिल गया, संतुष्ट क्यों नहीं हुए? सच्चा ज्ञान नहीं मिला। माने वेदों का ज्ञान सत्य नहीं है? हैं? गीता ज्ञान, वो गीता ज्ञान भी तो गीता में भी तो यही लिखा है व्यास प्रसादात, व्यास के प्रसाद से प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिलता है। और वेद भी है, वेदों में किसका नाम आता है? व्यास का नाम, वेद व्यास। तो वेदों में अगर सब कुछ पुराने से पुरानी चीज है तो वो है गीता। क्या? गीता। और गीता ज्ञान बाप ने आकर दे दिया, सत्य ज्ञान दे दिया, ज्ञान है निराकार, हमारी आत्मा भी निराकार, देने वाला बाप भी निराकार। लेकिन बोला कि जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दिया गीता ज्ञान, वो ज्ञान अमृत नहीं है। क्या बोला मुरली में? क्या? गीता ज्ञान तो है लेकिन अमृत नहीं है। जिस अमृत को पी करके देवता बन गए अमर, तो अमृत नहीं है। तो फिर अमृत कैसे बनेगा? है मंथन करने से। मंथन करने के लिए क्या चाहिए? है मंथन करने के लिए क्या चाहिए जो अमृत बने, मक्खन बने, सार बने? है उसके लिए चाहिए सात्विक मन। क्या चाहिए? सात्विक मन। मन कहो, दिल कहो, बाप एक ही है। दिल की सच्चाई सफाई चाहिए या नहीं चाहिए? है। और मननात मनुष्य, मन का पूरा उपयोग करे तो 100% मनुष्य, पूरा उपयोग न करे, मन का थोड़ा उपयोग करे, बाकी थोड़ा न करे तो मनुष्य या राक्षस भी हो सकता है। इस दुनिया में राक्षसी आत्माएं भी होती हैं। कलह क्लेश के युग में, पापी युग में वो मन का पूरा उपयोग करती है, है? नहीं करती। तो मन का पूरा उपयोग करने के लिए गीता में बताया है और अर्जुन ने पूछा है। क्या क्या पूछा? हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, बहुत तमो प्रधान है, इसकी चंचलता नष्ट करके एकाग्र कैसे करें? एकाग्र बने तो सत्व प्रधान, और चंचल है तो तामसी। जैसे राक्षस हैं उनको तो छोड़ ही दो, उनकी तो राक्षसी संस्कृति है ही अलग। राक्षसी इंद्रियों से सुख भोगते हैं, जिसको कहते हैं भ्रष्ट इंद्रियां, और देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं। तो देवताएं दिव्य कर्म करने वाले हैं और राक्षस असुर कहे जाते हैं। असुर माने जिनका सुर ताल आपस में मिलता ही नहीं, घर घर में झगड़ा, मियां बीवी में झगड़ा, बाल बच्चों में झगड़ा, परिवार एक बनता ही नहीं। एक परिवार का भांति कांग्रेस को वोट देगा, दूसरा देगा जनता पार्टी को, तीसरा देगा बहुजन समाजवाद। मत मतांतर होता है या नहीं होता है? क्योंकि मन चंचल है। और मन जो चंचलता है, चंचलता जिस मन में भरी हुई है, वो चंचलता पुरुषों में जास्ती देखी जाती है। इंद्रियों में, क्योंकि मन तो प्रधान है, इंद्रियां प्रधान नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। हाँ, इंद्रियों में कोई इंद्रिय है जिसको कंट्रोल करना मनुष्य राक्षसों के बस की बात नहीं है। वो तभी कंट्रोल हो सकता है जब मन एकाग्र हो। क्या दसों इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रिय है, जिसे कामेंद्रिय कहा जाता है, जिस कामेंद्रियों को कंट्रोल में रखना पुरुषों के बस की बात नहीं है। इसलिए पुरुषों को बाबा ने क्या बोल दिया? दुर्योधन दुशासन A to Z। क्या इस दुनिया का, पतित दुनिया का A1 आत्मा, मनुष्य आत्मा, और लास्ट आत्मा 500 करोड़ भी या 700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा, सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में। तो जो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट है, उनमें कोई ऐसी आत्मा है जो काम जीते जगत जीत बनती है? कामदेव को भी भस्म कर देती है। कोई है या नहीं? मनुष्य रूप में है, पशु पक्षी जानवर के रूप में है, राक्षस है या मनुष्य ही है? मन का उपयोग करने वाला है ना, तो जो मन कोई पुरुष के कंट्रोल में नहीं होता, एक ही गाया हुआ है, भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है, कौन? जो गाया हुआ है उसकी क्या एक्ट दिखाई गई, जिससे प्रैक्टिकल साबित हो जाए कि वो पुरुष तो है, पुरुष की इंद्रिय के रूप में दिखाया जाता है, अन्य आत्माएं देवात्माएं उनकी और इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन वो जो है अव्वल नंबर धर्मपिता, जिसका लिंग ही पूजा जाता है और इंद्रियां नहीं पूजी जाती, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल में एबर प्योर। प्रैक्टिकल जानते हैं क्या होता है? क्या प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है, शरीर की इंद्रियों के साथ होता है या बिना इंद्रियों के होता है? हैं? इंद्रियों के साथ। तो इंद्रियों में जो बड़ा डकैत है, महाशत्रु है, जिसको काम विकार कहा गया, उसको जीतने वाला एक ही गाया हुआ है। जो गाया हुआ है वो एवर प्योर है या नहीं है प्रैक्टिकल जीवन में? है, है नहीं? पुरुषार्थ पूरा होने पर एवर प्योर बनता है या नहीं? बनता है, तब ही उसकी पूजा होती है, यादगार मंदिर बनाए जाते हैं। कौन सा मंदिर है? है? और आज मंदिर नहीं है, सोमनाथ मंदिर तो 2500 साल पहले की बात, आज भी तो यादगार है नहीं? पूजा जाता है या नहीं? तो कौन सी आत्मा की यादगार है? है शंकर, शंकर तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, याद का पुरुषार्थ ही है ज्ञान योग धारणा सेवा, चार सब्जेक्ट में से जो मुख्य सब्जेक्ट है याद, उसे याद सब्जेक्ट का पुरुषार्थी है या संपन्न बन गया शंकर? हैं? पुरुषार्थी है, तो जो पुरुषार्थी है संपन्न नहीं है, और जो यादगार बनते हैं वो संपन्न स्टेज के बनते हैं या अधूरी स्टेज के बनते हैं? है? संपन्न स्टेज के बनते हैं। तो जो मंदिरों में शिवलिंग दिखाया गया वो कौन सी आत्मा की यादगार है? 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 हाँ, राम वाली आत्मा की यादगार है, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, कृष्ण बच्चा पहला पत्ता है सस्य रूपी वृक्ष का, बीज नहीं है, पहले पत्ते को जन्म देने वाला बीज बाप कोई तो होगा, है? बीज सदाकाल है या पत्ता, टहनिया, जड़ें, फल, फूल सदाकाल है? बीज सदाकाल है। तो जो सदाकाल बीज बाप है वो बेहद का बाप तो है, जैसे शिव बेहद का बाप है आत्माओं का, लेकिन जो बेहद का बाप है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। किसका बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि में एक ही हीरो पार्टधारी है जिसका सोमनाथ मंदिर में 100% सच्चा यादगार दिखाया गया था। क्या? हीरा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछेंगे तो कहेंगे शिव का यादगार है। तो उनसे पूछा जाए सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो शिव का यादगार है, परंतु हीरा तो पत्थर है, शिव कभी पत्थर बुद्धि बनता है? पत्थर बुद्धि कौन बनता है? है? मनुष्य आत्माओं में कोई मनुष्य आत्मा है जो पत्थर बुद्धि बनती है? एकदम कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि बनती है। इसलिए कलयुग में जो मंदिर बनते हैं उनमें जो लिंग रखा हुआ है कौन सी धातु का होता है? मोस्टली पत्थर। भक्ति मार्ग में चार प्रकार के लिंग प्रसिद्ध हैं, स्वर्ण लिंग है, सोना सच्चाई की यादगार, वो आत्मा सतयुग में सोने समान होती है, त्रेता में रजत लिंग चांदी के समान है, द्वापर में तांबे के समान है ताम्र लिंग, और कलयुग में लोहे के समान बन जाती है। एकदम काली जैसे ग्रेनाइट पत्थर है, पता है दुनिया का कौन सा पहाड़ है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना है? माउंट आबू। तो सोमनाथ में जो शिवलिंग था उसमें हीरा कौन सी आत्मा की यादगार हुई? है मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसकी यादगार है। जिस बीज के लिए गीता में बोला भगवान ने कि मैं जब आता हूँ तो किसको पहले पहले ज्ञान देता हूँ? है किसको? सूर्य ब्रह्मा को। ब्रह्मा कुमारियों के दिल में ब्रह्मा समाया गया, सूर्य को देता हूं। तो शिव है वास्तव में ज्ञान सूर्य, परंतु प्रैक्टिकल में शिव को ज्ञान सूर्य नहीं कहेंगे क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। तो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसका नाम दिया प्रैक्टिकल सूर्य के रूप में, पार्ट बजाने वाली आत्मा जो सारी दुनिया से डिटैच होकर रहती है। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कीड़े मकोड़े, पतंगे, जानवर, मनुष्य, राक्षस, जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं से डिटैच हो जाती है। कब? जब मनुष्य षष्ठी रूपी झाड़ पूरा परिपक्व हो जाता है, उसमें फल के अंदर जो बीज होता है वो पूरे वृक्ष से, जड़ों से, तने से, टहनियों से, फलों और फूलों से अपने को क्या कर लेता है, हैं? डिटैच कर लेता है। क्या अटैचमेंट रहता है? हैं? नहीं रहता। इसलिए जो पुराने पुराने किसान हैं, उनसे पूछो कि कौन सा बीज सर्वश्रेष्ठ होता है, तो वो यही कहेंगे, कोई भी पौधा हो, कोई भी पेड़ हो, उसका जो पहला पहला फल होता है, उस फल में जो पहला पहला बीज होता है, वो सबसे जास्ती खेती के लिए श्रेष्ठ होता है। तो ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में कोई मनुष्य रूपी आत्मा है? सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज, जिस बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, है? समाया हुआ है या नहीं है? सारा झाड़ समाया हुआ है। बीज में से ही सारा झाड़ निकलता है। नीम का बीज देखेंगे तो बुद्धि में झाड़ आएगा कि नहीं है? आएगा। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज अगर पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, हीरो पार्टधारी को ग्रास्प कर लिया, तो जैसे पाना था सो पा लिया। लेकिन होता क्या है, पा तो लिया, जान लिया, मान लिया, समझ लिया, लेकिन मुरली में शिव बाप ने एक शर्त रख दी है। पता है क्या शर्त है? हैं? हैं? नहीं, वो तो ठीक है, नंबर बार बनेंगे। असली बात है कि एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। क्या? एक बार पक्का कर लिया, अंजाम कर लिया कि हमें ऊंचे से ऊंचा भगवंत मिल गया, पाना था सो पा लिया, फिर उसके अलावा और किसी आत्मा की बातों में अगर आ गए, हाँ ये बात तो हम भी सोच रहे थे, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, और अनुमोदन कर दिया। जो भक्ति मार्ग में कहते हैं, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। क्योंकि वो हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, और वो ही हमारा सदगुरु भी है।
तो
एक बार स्वीकार कर लिया, मान लिया, जान लिया, दुनिया के सामने
हामी भी भरते रहे।
क्या कौन मिल गया हमको है? ऊंचे से ऊंचा भगवंत मिल गया। फिर दूसरी दूसरी आत्माओं ने जो कुछ सुनाया उससे प्रभावित हो गई। क्या उन बातों से प्रभावित हो गए? प्रभावित माना प्रजा। एक बार भी अगर प्रभावित हुए तो प्रजा, प्रकृष्ट रूपेण जा माने जन्म, प्रकृष्ट रूपेण जन्म लेने वाले अव्वल नंबर की आत्मा नहीं रहेंगे, क्योंकि 84 जन्मों में जो अव्वल नंबर का हमारा जन्म है वही तो सबसे श्रेष्ठ है। फिर हम दूसरों की बातें सुनने लगे तो उसे क्या साबित हुआ? रज रज के सुनने लगे और दूसरों को सुनाने भी लगे। क्या दूसरों को सुनाने भी लगे तो अंजाम क्या होता है? है निश्चय बुद्धि रहे या अनिश्चय बुद्धि होना शुरू हो गए? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। वो अव्वल नंबर का जो पहले जन्म का पार्ट है जो जल्दी ही खुल जाना चाहिए वो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। विनश्यते वो पार्ट विनाश हो गया। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची, 3 बार पसंद नहीं आई और 3 बार सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। शूटिंग कहाँ होती होगी? संगम में। पहली बार शूटिंग कब हुई है? अरे बोला है ना, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी निकलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो होती है लेकिन साथ ही साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित होती है। तो सन 36-37 से ही वो फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ गया था, जो सन 42-45 के बीच में ब्राह्मणों की सारी दुनिया तबाह हो गई और बाहर की दुनिया में भी इसका आक्ष पड़ा। कौन सा विश्व युद्ध हुआ था? 42-45 के बीच कोई विश्व युद्ध हुआ था है? नहीं हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी ध्वस्त हो गए। वो स्थूल में नाम दे दिया हिरोशिमा और ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में जो बेहद के हीरो थे, हीरो पार्ट बजाने वाले हीरे, वो सब टूट पड़े। उन्नीस सौ सैतालीस में दूसरी ब्राह्मणों की दुनिया रची गई। पहली जो ब्राह्मणों की दुनिया रची गई थी उस संगठन का नाम क्या था? ओम मंडली। सन 47 में क्या नाम पड़ गया? वो बिगड़ गई। पहला संगठन बिगड़ गया, दूसरे संगठन का नाम क्या पड़ा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। दूसरा संगठन ब्राह्मणों का शुरू हुआ, वो भी 18 जनवरी 1969 को। जो फाउंडर था ब्रह्मा, उसने शरीर छोड़ दिया। तो विघटन तो वहीं से शुरू हो गया था। क्या ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और विघटन की निशानी आ गई? जैसे द्वापर शुरू होता है और द्वैतवादी धर्म पिता अब्राहिम इस सृष्टि पर आ जाता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मत, दो दो कुल, द्वैतवाद शुरू हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में जो दीदी दादियां थी, मुखिया यज्ञ संभालने वाली, उन्होंने अपने अपने जर्नल अलग अलग कर लिए। क्या हो सकता है कोई पुराना यहाँ बैठा हो, उनको पता होगा? नहीं पता हो तो ब्राह्मणों की दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखो कि ये जोनल इंचार्ज कब से बने। गुजरात की जोनल इंचार्ज, यूपी की जोनल इंचार्ज, महाराष्ट्र की जोनल इंचार्ज, बंगाल की जोनल इंचार्ज, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया। द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ कि नहीं? प्रूफ तो ढेर सारे हैं, लेकिन देवताओं के इशारा ही काफी, विस्तार में ज्यादा क्यों जाना। विघटन शुरू हो गया और वो ब्राह्मणों की जो दूसरी दुनिया रची गई थी सन 47 में, उसका पूरा विघटन कब कहें, जिसका इशारा मुरली में ही दे दिया था। है? क्या? हाँ, क्या इशारा दिया? लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी नीचे लिखा हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। और मुरली में भी बोल दिया था ब्रह्मा के मुख से, क्या आज दुनिया, वो इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष। इन लक्ष्मी नारायण बोला तो नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया था ना, संगम युग लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया ना। इनका जन्म कब हुआ? जन्म माना इनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? तो बाबा के महावाक्य के अनुसार सन 76 आता है। 76 में पूरे ब्राह्मण परिवार में जोर शोर से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया था। क्या क्या मनाया गया? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। लेकिन ये किसी ने नहीं जाना कि कौन सा बाप प्रत्यक्ष हुआ। जाना था किसी ने? नहीं जाना। वास्तव में आत्माओं का बाप तो इस सृष्टि पर आया तभी प्रत्यक्ष हो गया, जब वो आता है और अपने बच्चों को नंबर वार आत्मा का परिचय देता है, आत्मा का परिचय मिला माना अपन को क्या समझ लिया, हम आत्मा हैं, आत्मा का जन्म हुआ। कोई जन्म की बात है नहीं स्थूल रूप में, लेकिन परिचय मिलना ही जन्म हो गया। किससे परिचय मिला? बाप से। तो 76 से जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया हुआ था, वो कोई आत्मा को तो प्रत्यक्ष हुआ होगा कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रत्यक्षता वर्ष झूठा और अव्यक्त बाप दादा ने भी घोषणा की प्रत्यक्षता वर्ष की, तो झूठी घोषणा की या सच्ची की है? सच्ची की। तो कौन आत्मा है जिसकी बुद्धि में पहले पहले ये बैठता है कि बाप प्रत्यक्ष हुआ, ये है मनुष्य सृष्टि का बाप? छिहत्तर से शुरुआत होती है। आप मुए मर गई दुनिया, वो राम वाली आत्मा कहाँ मरती है? ब्राह्मणों की जो पुरानी दुनिया है वहां मर जाती है। जब दिल्ली में पहला कार्ड छपाया गया था, उस कार्ड में मुरली का महावाक्य छपा था, उसमें लिखा था ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है, वो आकर के समझो, और एड्रेस दे दिया, फोन नंबर दे दिया। और सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटरों में वो कार्ड भेजा गया। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटरों से मोस्टली वो कार्ड वापस कर दिया गया काट पीट के। माने उनकी समझ में आया या नहीं आया? है नहीं आया। इस तरह एडवांस ज्ञान की शुरुआत होती है। एडवांस ज्ञान क्यों? एडवांस माने हायर क्लास का ज्ञान। छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनके टीचर अलग, स्थान भी अलग। वो ही बच्चे जब हायर क्लास में जाते हैं तो टीचर बदल जाता है और स्थान भी बदल जाता है। ऐसे ही संक्षेत्र से वो एडवांस ज्ञान और एडवांस पार्टी शुरू होती है और ब्राह्मणों की दुनिया नई दुनिया की शुरुआत हुई। छत्तीस में पहली बार स्थापना ब्राह्मणों की दुनिया की, 47 में दूसरी बार और 76 में तीसरी बार। कोई की समझ में नहीं आया बाबा का महावाक्य कि पुरानी दुनिया का विनाश हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ। कैसे हुआ? सारे ब्राह्मण तो जिंदा थे, सारे ब्राह्मण तो ज्ञान में चल रहे थे ना, मुरलियां सुन रहे थे ना, मुरलियों का ज्ञान सुना रहे थे ना, जिंदा नहीं थे है? मना जो बाबा ने घोषणा की कि मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता नारायण है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला राम वाली आत्मा, वो सन 76 से प्रत्यक्ष होता है। बीज वो पुराने ब्राह्मण संगठन से, पुराने ब्राह्मण रूपी वृक्ष से डिटैच हुआ या नहीं हुआ? डिटैच हो गया। डिटैच हो गया माने नई ब्राह्मणों की दुनिया की सृष्टि तीसरी बार शुरू हो गई। उसके लिए भी घोषणा कर दी, तुम बच्चों को माने एडवांस पार्टी के बच्चों को जो रुद्र शंकर कहा जाता है, शंकर के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होते हैं, वो शिव बाप रुद्रगणों को कहते हैं। तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 2017 में है 40 वर्ष पूरे होते हैं, और 40 वर्ष जब पूरे हुए तो जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है? अरे 40 वर्ष में तमो प्रधानता से सतो प्रधानता आ जाए तो तमो प्रधान पुरानी दुनिया पूरी हुई या नहीं हुई है? नहीं हुई, हो गई, क्योंकि जो नई दुनिया की शुरुआत करने वाला बीज है वो पुराने वृक्ष से डिटैच हो गया। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार हिंदी में उस वर्ष का नाम है 70। क्या रह? 70। कौन रहेगा? 70 रहेगा। और बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे? अरे वृक्ष में से एक बीज डिटैच हो गया, बाकी जो फल हैं कच्चे हैं या अधपके हैं उनमें जो बीज हैं वो डिटैच हो गए या अटैच रहे? है अटैच रहे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं हुए। कारण क्या बताया? अरे अभी तो कारण बताया है, क्यों नहीं हुए नष्ट मोह? एक बाप को पहचाना नहीं, मना उस सुप्रीम सोल बाप को इस मनुष्य सृष्टि में जो मुकर्रर रूप है, रथ है, उस मुकर्रर रथ में कोई ने नहीं पहचाना है। एक ने पहचाना, तो जो एक ने पहचाना वो ही हुआ सत इस सृष्टि में, क्योंकि वो एक ही आत्मा है जो पूरे 84 जन्म लेती है, वो कम जन्म नहीं लेती, और इसीलिए उसके लिए गाया है न उसका कोई साकार में बाप है। है उसका जन्म होता है, जन्म देने वाला कोई है साकार में? नहीं। वो सारी दुनिया को जन्म देगा लेकिन उसको कोई जन्म नहीं देगा। जन्म माना निश्चय बुद्धि, मृत्यु माने अनिश्चय बुद्धि। तो बाकी जो है वो अनिश्चय बुद्धि क्यों हो जाते? अरे अभी अभी तो बताया क्यों हो जाते हैं?
आपको पहचाना
नहीं, नहीं। अरे अभी हिसाब किताब अभी अभी बताया। अनेकों से ज्ञान सुना, अनेकों से प्रभावित हुए, अनेकों की बातों को स्वीकार कर लिया और शिव की बातों पर विश्वास उखड़ गया, तो विविचारी ज्ञान हो गया। जब विविचारी ज्ञान हो गया तो बाप के बच्चे रहे या औरों के बच्चे हो गए, जिससे प्रभावित हो गए उसकी प्रजा बन गए। अब अपने अपने दिल से पूछा जाए कि इस एडवांस के ब्राह्मण जीवन में हम किसी से कभी प्रभावित हुए या नहीं हुए? प्रभावित होकर के किसी की प्रजा नहीं बने, किसी की बात को स्वीकार नहीं किया एक क्षण के लिए भी है? बाप के प्रति ज्ञानी का संकल्प आता है, अनिश्चय का संकल्प आता है, तो क्या साबित होता है? है अनिश्चय का संकल्प आता है तो साबित क्या होता है? है बाप का बच्चा नहीं रहा। उसी सेकंड, उसी क्षण बाप का बच्चा नहीं रहा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, कोई संकल्प है सारी जिंदगी तो एक संकल्प चलता है, तो अंत समय में वही संकल्प है याद आ जाता है। स्त्री को पुरुष का अंग याद आ जाता है और पुरुष को स्त्री का अंग याद आ जाता है, इसलिए स्त्री जन्म पुरुष जन्म, पुरुष जन्म स्त्री जन्म, ये चलता रहता है। एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का चलता है। कारण क्या हुआ है? अंत मते और अंत में कौन सी मते? अंत में वो ही संकल्प आता है जो सारे जीवन ज्यादा चलता है। क्या? जैसे बहुत से बच्चे अभी ज्ञान में आते हैं और आकर के टूट जाते हैं, टूटते हैं ना, कोई संकल्प जो ईश्वरीय ज्ञान का संकल्प है उसके विपरीत तो कोई संकल्प आता है उनको, या नहीं आता है या बिना संकल्प के टूट जाते हैं है? कोई न कोई संकल्प आता है और वो संकल्प इतना परिपक्व हो जाता है कि वो अंतमते सोगते कर देता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में एक क्षण भी अगर बाप के प्रति अनिश्चय का संकल्प आया, कोई न कोई ग्लानी का संकल्प आया, तो शूटिंग हो जाती है, रिहर्सल हो जाती है। इसलिए स्ट्रिक्टली तुलसीदास ने बोल दिया क्या, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, हो पाप गऊ घात सबाना। जानवर गऊ की तो बात ही नहीं, यहाँ कौन सी गऊ की बात है, जानवर गऊ की। कन्याओं जो कन्याएं सरेंडर होती हैं, उन कन्याओं को कोई उनकी पवित्रता को खंडित कर दे तो जैसे वो ज्ञान में से हमेशा टूट जाती है। तो ऐसे ही बताया ये बहुत बड़ा पाप हो गया, जो राजयोग सिखाने वाला बाप 16,000 की संख्या राजयोगियों की तैयार करता है, जन्म जन्मांतर के राजाई की फैमिली में आने के लिए कितनी आत्माओं की संख्या है, कितनी आत्माओं की संख्या 16,000। वो 16,000 की संख्या में से जैसे कटौती कर दी, एक कन्या अगर टूटती है सरेंडर होने के बाद तो उसके द्वारा जितने भी निकाले जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही टूट जाएंगे। हर एक आत्मा का 84 जन्म का संबंध में आने वाली आत्माओं का, संपर्क में आने वाली आत्माओं का दायरा अपना अपना है या नहीं है, है? हर आत्मा का, जो भी एडवांस में आए, जो भी ईश्वरीय सेवा के प्रति तन से मन से धन से समय और संपर्क से अर्पणमय होकर के चलते हैं, वो आत्माएं जैसे कि राज फैमिली की हैं, भगवान बाप आकर के क्या बनाता है राजयोग से, है? राजा बनाता है। राजा न भी बने तो भी राज फैमिली में तो जरूर आएंगे। जैसे धृतराष्ट्र राजा था कौरवों का और दुर्योधन दुशासन राजा तो नहीं थे, थे हैं? लेकिन उनका राजाई का प्रभाव था या नहीं था, नहीं था, राजाओं जैसा ही प्रभाव हो गया या नहीं हो गया। तो भले प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, 16,000 की संख्या में त्रेता के अंत तक, लेकिन वो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली आत्माएं भी राजाई की क्वालिटी की हैं, कंट्रोलर हैं। क्या उनमें कंट्रोल करने के गुण हैं, ऐसी आत्माएं जो राजयोग सीख करके राजा बनती हैं, राजा की क्वालिटी की बनती हैं, वो आत्माएं सारे संसार को कंट्रोल करने वाली एक न एक दिन बनेंगी या नहीं बनेंगी? क्योंकि त्रेता के अंत में आपने देखा होगा तीन सीढ़ियां कटी हुई हैं, है? जो भगवान ने राजाई स्थापन की उस राजाई को खंडित करने वाले राजाएं हुए उन तीन जन्मों में, हुए ना त्रेता के अंत में, वो हुए सबसे घटिया क्वालिटी के कंट्रोलर, राजयोग सीखने वाले। और फर्स्ट जन्म में राधा कृष्ण को जन्म देने वाली आत्माएं नरसिंह नारायण बनने वाले सारे विश्व के कंट्रोलर, सबसे ऊंचे कंट्रोलर दुनिया के हुए या नहीं हुए? है? नहीं हुए, हुए। जो सतयुग के आदि में सबसे ऊंचे कंट्रोलर थे वो ही फिर हिस्ट्री रिपीट्स, द्वापर युग से वो हिस्ट्री रिपीट हो जाती है। वो ही आत्माएं द्वापर के आदि में राजा विक्रमादित्य और उनके गुरु, जिन्होंने विकारी राजा विक्रमादित्य को सिखाया कि दुख की निवृत्ति के लिए तुम क्या करो, है? सोमनाथ मंदिर स्थापन किया। तो जो सतयुग के आदि में ऊंचे थे वो द्वापर के आदि में भी ऊंचे हुए, और जो त्रेता के अंत में नीचे से नीचे हुए वो ही कलयुग के अंत में भी नीच राजाई को प्राप्त करने वाली आत्माएं बनेंगी। और उसी नीची दुनिया में प्रजा को कंट्रोल करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 16,000 की लिस्ट है वो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कहीं न कहीं कभी न कभी कंट्रोलर बनते हैं या नहीं बनते हैं? है? बनते हैं। तो निश्चय बुद्धि बनते हैं तब सरेंडर होते हैं, और अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो पहले सर अंडर फिर सर, सामना करने वाला सर बनेगा या अंडर बनेगा? है? जब विरोधी बन जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो बाप का मुकाबला करते हैं या सरेंडर होकर रहते हैं? है? क्या होते हैं? सतो प्रधान स्टेज है तो सरेंडर होते हैं, तपो प्रधान स्टेज बनती है तो है सर ऊंचा उठ जाता है, बाप का मुकाबला करने लग पड़ता है, ग्लानिंग करने लग पड़ता है। और इसका कारण क्या बताया, क्यों ऐसा हुआ? हैं? हाँ, ज्ञान को विभिचारी बनाया, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया, सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने क्या पाया? दुर्गति पाई। ये महावाक्य है ईश्वरीय। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, यही भारतवासी हैं। नौ कुरियों के ब्राह्मण जो संगम में तैयार होते हैं, नौ धर्मों से आई हुई आत्माएं जो द्वापर युग से अलग अलग धर्मों में टाइम टू टाइम कन्वर्ट होती रही। कैसे कन्वर्ट हुई थी? अरे हैं? वही ऊपर से आने वाली आत्माओं ने, धर्म पिताओं ने द्वैतवाद की बातें सुनाई हैं और ग्लानी की। अरे तुम्हारे राजा राम भगवान, उनकी सीता चुराई गई, ऐसा भी भगवान होता है जिसके घर की सीता ही चुरा ली जाए तो वो दुनिया की क्या रक्षा करेगा प्रजा की? बस आगा पीछा कुछ नहीं देखा। हाँ बात सच्ची। तो ऐसे ही अभी तक हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। अनेक प्रकार की पार्टियां निकल रही हैं, विरोध बढ़ता जा रहा है और सबसे जास्ती विरोधी कौन है पता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के फॉलोअर या ब्रह्मा के फॉलोअर? वो कई सालों से ये प्लान बनाते चले आ रहे हैं, बोलते भी आ रहे हैं आपस में कि जैसा तुम्हारे बाबा का हसर किया था, वही हसर जितने भी एडवांस पार्टी के सेंटर हैं वहां के मुखियाओं का हसर करेंगे। हर साल प्लानिंग बनाते हैं लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पाते। अब ये स्थिति आ गई कि गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा बाबा भी बोलने लगे, उनकी खिलाफत में। क्या बोला? दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारियां पास में बैठी है, बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप हैं माउंट आबू में बैठे हैं। दो तीन बार बाबा ने फिर वही बात रिपीट की। आखरीन कोई ऐसी भी ब्रह्मा कुमारी थी जिसने बाबा के मुंह में हाथ रख दिया, बैल के मुंह में मुसीका लगा दिया। अब जब ये हालत हो जाती है तो जैसे ब्रह्मा बाबा का अचानक हार्ट फेल हुआ, उनके फॉलोअर्स का भी वो ही असर होता है। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे या ऊंचे चढ़ जाएंगे। कुमार का दादी ने शरीर छोड़ा तो कई दिन तक दिखा दिया कामा में है, हॉस्पिटल में। तो कई दिन तक नहीं ठीक हुई तो घोषणा कर दी शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही जगदीश भाई ब्रह्मा कुमारियों को उल्टी पट्टी पढ़ाई एडवांस ज्ञान के बारे में, खूब ट्रेनिंग दी, दिमाग में ट्यूमर हो गया, अचानक शरीर छोड़ दिया। तो अचानक शरीर छोड़ने वाली आत्मा क्या बनती है? सूक्ष्म शरीरधारी बनती है। अभी गुलजार दादी की बारी आई, कई दिनों से हॉस्पिटल में, बताते ही नहीं है, कभी खबर आती है शरीर छूट गया, कभी खबर आती है नहीं इस हॉस्पिटल में, नहीं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का प्लान बन रहा है, पक्की खबर किसी को नहीं मिल रही। अब ब्रह्मा बाबा का मुंह रोकेंगे, मुंह पकड़ेंगे, तो ब्रह्मा बाबा का उस तन में आना वाजिब हुआ या गैर वाजिब हुआ? है वाजिब है, गैर वाजिब हो गया। वैसे भी बाबा की वाणी के अनुसार 40 साल पूरे हो रहे हैं, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की बात बताई, तो जब 40 साल पूरे हो रहे हैं तो ज्ञान सूर्य उदय होगा या नहीं होगा? एक तरफ ज्ञान सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ पूर्णमासी, क्या चंद्रमा संपूर्ण होता है, और चंद्रमा संपूर्ण बनता है तो दूसरी तरफ पश्चिम में अस्त होता है और पूरब में सूर्य उदय होता है। अब यही होने वाला है, 40 साल पूरे हुए, सात्विक आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, बाकी को पता ही नहीं लगेगा कहां प्रत्यक्ष हुए। उन 8 आत्माओं को पता लगेगा बाप कहां है, जो बाप का विरुद्ध है। 2000 से ही अव्यक्तवाणी में बोला, दुनिया वाले समझते हैं बाप गुप्त हो गए, क्या 98 में एलिगेशंस लगे थे ना, तो उस समय अंडरग्राउंड हुए, तो दुनिया वालों ने समझा बाप गुप्त हो गए और बाप बच्चों के सामने सदा प्रत्यक्ष हैं। किसके सामने? बच्चों के सामने। कौन से बच्चे? जो बाप की बात को मानते हैं। बाप के विपरीत अगर कोई बात सुनाता है तो उस बात को एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, स्वीकार ही नहीं करते, हियर नो विल, डोंट केयर। सदगुरु निंदा सुनिए न काना, पक्का निश्चय, बिल्कुल प्रभावित नहीं होते और ईश्वरीय सेवा को बिल्कुल छोड़ते ही नहीं, अपनी सेवा में दत्त चित्त होकर के लगे रहते हैं। देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से, देह के संपर्कियों से कोई लगाव नहीं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये फाइनल पेपर है या नहीं है? है? है जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा, जिनका बाप से संबंध नहीं उनका हम बच्चों से कोई लेना देना
नहीं।
लेना देना नहीं। ऐसी आत्माएं जो फाइनल पेपर में पास होती है उनकी संख्या कितनी बताई? 16,000। है कितनी संख्या बताई?
8।
वो 8 के लिए अभी भी वाणी में बोलते हैं अव्यक्त बाप दादा कि बाप बच्चों के बिगर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बिगर नहीं रह सकते। एक दिन भी अगर बातचीत नहीं होगी तो अंदर से तलक ही लपन आ जाता है। जाने कितने लंबे समय से बिछुड़े हुए हैं।
ऐसी
जो यहाँ शूटिंग करते हैं रिहर्सल के पीरियड में, शूटिंग का पीरियड है वहाँ 84 जन्म में भी साथ ही बनकर रहेंगे या बीच बीच में विरोधी भी होते जाएंगे? हैं? साथ ही बनकर रहेंगे। उनकी संख्या कितनी बताई? 8। अष्टदेव जो संगम युग में विश्व की बादशाही तैयार होती है, उस विश्व की बादशाही को एक ही संभालेगा या सहयोगी भी होंगे? हैं? हाँ। वो 8 दिग्पाल गाये हुए हैं। दिग्पाल माने दिशाओं की पालना करने वाले। क्या 4 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 उनके कोण, कितने हुए? 8। ये 8 सारी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। जिम्मेवारी का ताजधारी होंगे। बाप बेताज बादशाह बनकर रहता है। क्या जिम्मेवारी का ताज, विश्व की जिम्मेवारी का ताज किसको देता है? बच्चों को देता है। बेताज बेताज बादशाह, इसकी कोई यादगार है? शास्त्रों में भक्ति मार्ग में कोई यादगार है? शंकर की यादगार है। पार्वती को फिर भी ताज दिखाते हैं, शंकर को तो कोई ताज नहीं दिखाते। फकीर का फकीर ही दिखाते हैं या बादशाह दिखाते हैं? हैं? फकीर का फकीर ही दिखाते हैं। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा हुआ है तो ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में हम सब ब्राह्मण सेवाधारी हैं या राजा बनकर बैठने वाले हैं? हैं? हाँ, हम सेवाधारी हैं। हमें कुर्सी का नशा नहीं होना चाहिए, राजाई का नशा नहीं होना चाहिए। हम इनके ऊपर कंट्रोल है, हमारी बात मानो। रिक्वेस्ट से काम चलाना है। तो बताया कि तुम बच्चे जो सम्मुख बैठे हो तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख बैठते हैं, अंदर से भी सन्मुख और बाहर शरीर से भी सन्मुख। नहीं तो बहुत से ऐसे भी होते हैं, बाहर से तो देखने में आते हैं सन्मुख बैठे हैं, मीठी मीठी बातें भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर में मुख मेराम बगल में छुरी। मौका मिलेगा तो अच्छी तरह से पीछे में भोंक देंगे। तो उनको सन्मुख कहेंगे है? सन्मुख नहीं कह सकते। तो अच्छी तरह से सन्मुख तुम बैठे हो कि बरोबर बाबा, ऐसे बुद्धि में बैठा है तो खुशी होना चाहिए ना बच्चों को है? बाबा के ऊपर पक्का निश्चय बैठा हुआ है तो खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए या नहीं झलकनी चाहिए है? झलकनी चाहिए। संगम युग मौजों का युग है या रोने का युग है? मौजों का युग है। बाप सेवाधारी तो बाप के बच्चे भी सेवाधारी, और सेवा का मेवा क्या चीज? खुशी। अगर खुशी नहीं है, अपने को भी महसूस नहीं होती, जिनसे बात करते हैं उनको भी हमारे चेहरे से खुशी महसूस नहीं होती, तो खुशी का मेवा खा रहे हैं है? खा रहे हैं नहीं खा रहे? तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए क्योंकि बाबा हमारा वेद का बाबा है। क्या है? बेहद का बाबा। बेहद का बाबा माने है? बेहद का बाबा हमारा बेहद का बाबा है, बेहद का बाप नहीं है, है?
बाप मुझे मिलाता है, बाबा मुझे साकार मिलाता है।
माने मनुष्य का बाप नहीं है। साकार निराकार का मेल है, मेल है तो बाबा भी है, ग्रैंडफादर। साकार निराकार का मेल है तो बाबा भी है। सारे संबंध तब ही बनते हैं जब साकार में है निराकार। हमारा बाबा भी है, ग्रैंडफादर। बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलेगा। तो बताओ कौन सी आत्मा की बात है जिससे हमें ग्रैंडफादर के रूप में वर्षा लेना है? निराकार बाप की बात है जो निराकारी ज्ञान का वर्षा देगा, या साकारी सृष्टि में स्वर्ग का वर्षा लेना है? क्या लेना है? साकारी सृष्टि में स्वर्ग का वर्षा लेना, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना, जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से मुक्त भी रहे। तो हमारा बेहद का बाबा है, हम बच्चे बेहद के बच्चे हैं, हमारा बाबा भी बेहद का बाबा। जो क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं हैं वो हद के बाप हैं अपने अपने फॉलोअर्स के। वो ग्रैंडफादर नहीं है, बापों के बाप नहीं है, धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स हैं। लेकिन उन ग्रेट फादर्स का भी फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो कौन है? शिव। शिव ग्रैंडफादर बनता है? शिव के साथ हमारा सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध है कि ग्रैंडफादर का भी संबंध है? बाप का संबंध है या ग्रैंडफादर का भी संबंध है?
अरे
हाँ, शिव बिंदी का नाम है। और जो आत्माएं हैं उनके शरीर का नाम, तो जिसको हम शिव कहते हैं वो कभी बाबा नहीं बनता, वो कभी सदगुरु नहीं है। सत माने सच्चा गुरु, सच्चा गुरु माने सदगति करने वाला, सदगति सच्ची गति, शरीर भी रहे और जीवन रहते हुए सुख ही सुख मिले, कभी भी दुख नहीं मिले, ऐसा बाबा जो हमें बेहद का वर्षा देता है। बेहद का वर्षा देने वाला बाबा हो या बाप हो, प्रॉपर्टी देने वाला, वो खुद भी उस प्रॉपर्टी को अनुभव करेगा या नहीं करेगा? है? करेगा। बाप हो धनवान, और धन का एक पैसे का सुख ना मिले तो बच्चों को देगा? है? नहीं। धनवान बाप है तो धन का वर्षा देगा। ज्ञान धन का अखूट भंडार वाला बाप है तो ज्ञान धन का अखूट भंडार देगा, और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप है तो खुद पहले जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा, बाद में बच्चों को देगा, या खुद अनुभव नहीं करेगा दूसरों को दे देगा? है? पहले खुद अनुभव करे फिर बच्चों को दे। तो यही बात है कि बेहद का बाबा फिर से 5-4 वर्ष के बाद हमको फिर से ये राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। फिर पूछा, कौन दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं बेहद की शिक्षा? है? बेहद का बाबा या बेहद का बाप? बेहद का बाबा दे रहे हैं, माना वो बाबा जो आत्मा है जिसको हम बेहद का बाबा ग्रैंडफादर कहते हैं, वो आत्मा स्वयं पहले जीवन मुक्ति का वर्षा अनुभव जीवन में करने वाली है, फिर बच्चों को नंबरवार देने वाली। तो पूछा, कौन दे रहे हैं ये राजयोग की शिक्षा? अरे इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा, नहीं बनाएगा? वकील या जज होगा तो वकालत सिखाएगा, जज बनाएगा? डॉक्टर होगा है तो डॉक्टर सिखाएगा, खुद ही डॉक्टर नहीं होगा तो है तो नहीं सिखाएगा, न सिखाएगा और न टाइटलधारी बना पाएगा। पहले खुद टाइटल लेगा या पहले बच्चों को देगा? है? तो बताओ, शिव बाप टाइटल लेने वाला है जीवन मुक्ति का या जीवन मुक्ति लेने की युक्ति बताता है, वो युक्ति बताता है, स्वयं जीवन मुक्ति का टाइटल नहीं लेता, जीवन मुक्ति लेता भी नहीं है, देने की बात ही नहीं। तो बाप कहते हैं सुप्रीम सोल कि न मैं किसी को कुछ देता हूँ न किसी से कुछ लेता हूँ, लेने देने का हिसाब किताब तुम्हारा आपस में है, मेरा कोई से कोई हिसाब किताब नहीं है, मैं सिर्फ ज्ञान देता हूँ। जो तुम बच्चों में से किसी के पास वो सच्चाई का ज्ञान नहीं है, तुम बच्चों में से कोई भी नहीं दे सकता, क्या तुम बच्चों में से कोई बच्चा नहीं है जो सच्चाई का ज्ञान सत्य का ज्ञान दे सके, एक मैं ही हूँ तुरिया बाप जो सत्य का ज्ञान देता हूँ, लेता नहीं हूँ है, और ये भी कहता हूँ कि मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूँ। तो अव्वल नंबर में कोई तो बनेगा नहीं बनेगा, जो सुप्रीम सोल बाप समान सत्य को 100% धारण करने वाला बनेगा, वो बाप का बड़ा बच्चा हुआ मझला हुआ या छोटा बच्चा हुआ। और दुनिया में ये रस्म चलती आई है कि दुनिया के जो भी बाप हुए हैं उन्होंने अपना वर्षा राजाई का हो या कुछ भी हो बड़े बच्चे को दिया है या छोटों को मझलों को दिया है, ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? संगम युग से सुप्रीम सोल बाप के द्वारा शुरू हुआ। वो सुप्रीम सोल बाप गीता में कहता है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस, दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते, मैंने अपने बड़े बच्चे को प्रॉपर्टी दी है, जो प्रॉपर्टी मेरे पास वो प्रॉपर्टी दी है, तो दुनिया में जितने भी बाप हुए हैं छोटे बड़े वो सब अपने बड़े बच्चे को देते। तो राजयोग की शिक्षा कौन दे रहे हैं पूछा, इसका जवाब चाहिए, कौन दे रहे हैं, देने वाली कोई आत्मा है या नहीं है, कौन है, कौन है, हैं? अरे वो आत्मा कौन है जो राजयोग की शिक्षा देता है सुप्रीम टीचर बनकर, वो एक ही है जो बाप भी है, ज्ञान का बीज बोने वाला माता भी है, परम ब्रह्म है या नहीं, बाप भी है माता भी है टीचर भी है, टीच करता है, जो प्राइमरी में पढ़ा है सुना है कविता दोहे तुलसीदास के रहीमदास के रटे हैं ना बच्चों ने, उनकी गहराई को तो नहीं समझा, जब बड़े होते हैं हायर क्लास में जाते हैं तो उनकी व्याख्या मिलती है कि नहीं है? तो ऐसे ही वो सुप्रीम टीचर भी है, जो भी गीता ज्ञान मिला है उस गीता ज्ञान को मंथन करके तुम बच्चों को सार देता है। क्या देता है? सार देता है। सार माने है? निचोड़ देता है। और वो निचोड़ नंबर वार तुम बच्चे पाते। राजयोग की शिक्षा देता है। ये ज्ञान का सागर है। क्या है?
ज्ञान का सागर है। अरे अभी कहते हैं ज्ञान सूर्य,
फिर कहते हैं ज्ञान सागर। कहाँ सूर्य? सूर्य तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मनुष्य, राक्षस, देवताओं सबसे डिटैच होकर रहता है या उनसे अटैच होकर रहता है? डिटैच होकर रहता है, उसे कहते हैं सूर्य। और सागर? सागर तो धरणी माता से अटैच होकर रहता है या डिटैच होकर रहता है? अटैच होकर रहता है। दुनिया में, पृथ्वी में एक हिस्सा पृथ्वी है और तीन हिस्सा सागर है। तो कौन किसी की गोद में बैठा हुआ है? सागर पृथ्वी की गोद में बैठा है या पृथ्वी माता सागर की गोद में बैठी है? 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 सागर की गोद में पृथ्वी माता बैठी है। और चंद्रमा? चंद्रमा उपग्रह है। किसका उपग्रह? पृथ्वी का उपग्रह। माना पृथ्वी से छिटक करके जो अलग हुआ उसका नाम चंद्रमा दिया है। जो स्वयं प्रकाशित नहीं है, सूर्य से प्रकाशित है। पृथ्वी माता से भी प्रकाशित नहीं है, किससे प्रकाशित है? सूर्य से प्रकाशित है। तो चंद्रमा माता का बच्चा हुआ या नहीं हुआ? है? जो माता का बच्चा है वो कभी माता की गोद में था या नहीं था? है? कैसे? जो प्रशांत महासागर है ना, सबसे बड़ा सागर, अंद महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये नॉर्थ साउथ, ये जो सागर हैं, उन सागरों में सबसे बड़ा सागर का नाम प्रशांत महासागर। उस प्रशांत महासागर में से वो चंद्रमा छिटक करके अलग हो गया, उपग्रह बन गया पृथ्वी का। तो कभी अटैच भी रहा होगा। अटैच सतो प्रधान स्टेज में रहा होगा या तमो प्रधान स्टेज में रहा होगा? है? अटैच होकर के पृथ्वी की गोद में सतो प्रधान स्टेज में रहा होगा या तमो प्रधान स्टेज में रहा होगा? है? माता बोलती भी जा रही, फिर जीभ भी निकालती जा रही है। अरे तमो प्रधान स्टेज होती है चंद्रमा की, तब तब अटैच होता है। माने अधूरा चंद्रमा पृथ्वी की गोद में आता है, है? बाकी ऊपर ही रहता है। नहीं और हाँ, माना कोई भी बच्चा है जब सात्विक स्टेज होती है तो माता की गोद में खेलता है, जब सात्विक स्टेज से नीचे आता है सत्व सामान्य रजो और तमो तो दूर हो जाता है। ऐसे ही ये चंद्रमा रूपी उपग्रह है जो अधूरा भी बनता है और संपूर्ण भी बनता है। तो जब संपूर्ण बनता है तब जब सृष्टि का संपूर्ण विनाश होगा तो चंद्रमा पृथ्वी की गोद में समा जाएगा। माने जिस प्रशांत महासागर से अलग हुआ था उसी प्रशांत महासागर में समा जाएगा। उसका क्या रिजल्ट होगा? जो प्रशांत महासागर का जल स्तर है, चंद्रमा जब उसमें समा जाएगा तो जल स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इतना जल स्तर बढ़ जाएगा कि सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। क्या जलमयी होगी कि नहीं विनाश काल में? जलमयी हो जाएगी। एक तो एटमिक एनर्जी फटती है, उसकी गर्मी से नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो फट करके समंदर में गिरते हैं तो भी समंदर का स्तर बढ़ता है। दूसरे चंद्रमा भी प्रशांत महासागर में जुड़ जाता है तो जल स्तर ऊंचा हो जाता है। सारी दुनिया जलमयी में क्या होगा? समा जाएगी नहीं है? समा जाएगी। जलमयी में समा जाएगी माने सारी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी? नहीं, बाढ़ नहीं आएगी। बाढ़ आएगी, बाढ़ आती है तो बाढ़ में जो जल है वो मिट्टी वाला बन जाता है या शुद्ध जल रहता है? हैं? मिट्टी वाला माने देह बहाने की मिट्टी। क्या होगा? जो पृथ्वी में मिट्टी ही मिट्टी है वो सारी देवानी की मिट्टी उस जल में समाई हुई होगी। ज्ञान जल कैसा हो जाएगा? है देह अभिमान की मिट्टी वाला हो जाएगा। ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जाएगा त्यों त्यों मनुष्य बंदरों में सल होते जाएंगे। जैसे बंदर है बिल्डिंग की ऊंची अटारी पे बैठता है, विकार भोगता है, वृक्ष के ऊंची डाल पर बैठ करके विकार भोगता है, ऐसे ये दुनिया के मनुष्यों की हालत हो जाएगी। इतना विकार बढ़ जाएगा, देह अभिमान की मिट्टी आत्माओं में भर जाएगी। तो सब अंधे हो जाएंगे या सोजरे हो जाएंगे? है अंधकार फैल जाता है। अभी वो ही अंधकार अज्ञान का कहा जाता है महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि? महान ते महान, बड़ी ते बड़ी रात्रि अज्ञान अंधकार की, जिसमें सारी दुनिया अज्ञान रूपी जल में समा जाएगी। एक बचेगा, फिर जो आठ हैं वो बचेंगे है? वो भी नहीं बचेंगे। क्यों? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इस संसार में सत्य का अभाव नहीं होता, सदा रहता है, और झूठा है नष्ट होता है। तो जो आठ हैं वो भी कुछ न कुछ दूसरों के प्रभाव में, माया उनको भी नहीं छोड़ेगी, उनको भी खा जाएगी। ओम शांति। सत्रह से शुरू होगा, अनिश्चय बुद्धि शुरू होगा। अभी दूसरों से प्रभावित नहीं हुए कभी?
अभी रिजल्ट जल्दी आने वाला है, नाई के बाल आगे ही आ जाएंगे।